नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किसान, महिला, गरीब व युवा सहित हर व्यक्ति के हित में काम किया है। यमुनानगर में 52,87,00,000 रूपये की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम व ओपन एयर थिएटर का निर्माण 18 महीने में पूरा होगा। लोगों को प्रदूषण से बढ़ते खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और पंचकूला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सहायता, मौलिक अधिकारों व सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंडीगढ़ का दौरा करेंगे, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आज पहुंचने की उम्मीद है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिन्हें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लागू किया गया है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि पुलिस नए कानूनों के लागू होने के बाद कानून प्रवर्तन, न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्य प्रबंधन में सुधार को प्रदर्शित करने के लिए थिएटर कलाकारों की मदद से एक लाइव प्रदर्शन करेगी। इसमें सेक्टर 12 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में 8 मंच प्रदर्शन शामिल होंगे, जिनमें से एक में हत्या की जांच को दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉल में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने मोहाली और पंचकूला से शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच के लिए प्रमुख प्रवेश मार्गों पर नाके लगाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने चंडीगढ़ को 2 से 3 दिसंबर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए गांव बीड़, पिपली, खानपुर, बाबैन, मंगोली, जाटा, छपरा और गोविंदगढ़ में धन्यवाद सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। चाहे किसान हो, महिला हो, गरीब हो या युवा, हर व्यक्ति के हित में कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जहां युवाओं को रोजगार मिला, किसानों को 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला, गरीबों को रहने के लिए भूखंड और मकान बनाने के लिए आर्थिक अनुदान मिला, वहीं प्रदेश में समान रूप से तेज गति के साथ विकास हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासनकाल में लगातार झूठे वादे किए हैं और महिला हो या युवा, हर वर्ग का शोषण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों की हर समस्या का समाधान करेंगे। प्रदेश व लाडवा के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
लोगों की ग्रीवेंस उनके बीच में भी जाकर के सुनेंगे और यहाँ कुरुक्षेत्र में कार्यालय है वहाँ पर भी सुनेंगे और अगर जरूरत पड़े तो चंडीगढ़ में भी सुनते हैं, क्योंकि किसी को कोई दिक्कत समस्या ना हो उसकी बात को सुनकर के उसका समाधान करना यह हमारी सरकार का दायित्व है और हम लगातार उसके अंदर लग रहे हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव बीड़, पिपली की 12 मांगों को पूरा करने और 20 लाख अनुदान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव खानपुर में 20 लाख रुपए और गांव बाबैन में 30 लाख रुपए अनुदान राशि देने के साथ साथ गांव की गलियों के निर्माण के लिए अनुमान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब शीघ्र ही गरीब लोगों को प्रथम चरण में 100-100 गज के 1 लाख भूखंड उपलब्ध कराएगी और इन भूखंडों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने झूठ बोलकर बरगलाने का काम किया है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, उनकी बातों में नहीं आएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। यमुनानगर में नगर निगम द्वारा सेक्टर 17 में बनने वाले ऑडिटोरियम व ओपन एयर थिएटर के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इनके निर्माण पर 52,87,00,000 रुपए की लागत आएगी। भूमि पूजन समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि मंत्री ने बताया कि दिव्य नगर योजना के तहत होने वाले इस विकास कार्य का निर्माण 18 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। ऑडिटोरियम में एक साथ 1,000 दर्शकों के वातानुकूल वातावरण में बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं ओपन एयर थिएटर में एक साथ 500 दर्शक बैठ सकेंगे। लोगों को प्रदूषण से बढ़ते खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव टीसी नौटियाल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
جہاں تک ہو سکے گاڑیوں کا کم استعمال کریں اور آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ یا تو سائیکل کا استعمال کریں یا پیدل جائیں. اسی پرکار سے گھروں میں گیلا اور سوکھا کچرا اگر الگ الگ آپ رکھیں گے تو اس سے بھی ہمارا پردوشن جو ہے وہ کافی کم ہو سکتا ہے. اسی پرکار سے انڈسٹریز میں جو جنریٹرز چلتے ہیں یا کوئی بھی فیول جلایا جاتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی مشینز بالکل اچھی ہوں تاکہ وہ پولوشن کو کم رکھے.
श्री नौटियाल ने कहा कि इस बार प्रदूषण से चंडीगढ़ जैसा शहर भी अछूता नहीं रहा, इसलिए आज जरूरत है कि सभी भागीदारी करके इसे नियंत्रित करने में अपना सहयोग दें. उन्होंने कहा कि सब मिलकर जब काम करेंगे तो प्रदूषण थोड़ा नियंत्रण में आएगा. हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सुविधाओं का समयबद्ध लाभ देना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की सुशासन की नीति का लाभ आमजन तक सुविधाजनक तरीके से पहुंच सके. स्वास्थ्य मंत्री ने आज पलवल में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक में ये निर्देश दिए. बैठक में कुल 12 परिवाद शामिल किए गए जिनमें से 8 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया. पंचकुला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज से 31 दिसंबर तक मोबाइल वैन के माध्यम से एक महीने का कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया है. आज अभियान का शुभारंभ पंचकुला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके लाल ने जिला न्यायालय परिसर से मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर किया. इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मोबाइल वैन चलाने का उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं व मौलिक अधिकारों सरकारी योजनाओं के बारे जानकारी पहुंचाना है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक वैन सेवा भेजी जा रही है. उसके माध्यम से 31 गांवों में हमारे न्यायालय के विधिक सेवा से जुड़े हुए अधिवक्तागण जाएंगे और वहां पे गांव वासियों के बीच में उनको का ज्ञान बताएंगे, कानून के बारे में उनको जागरूक करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में सजग करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ साथ उन्हें अपने विवादों को न्यायालय के माध्यम से साथ साथ अपने समाधान करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से प्रेरित करेंगे जिससे उनका कानूनी खर्चा है,
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार घणघट सहित अधिवक्ता भी उपस्थित रहे. पुलिस विभाग में जवान की भूमिका केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि ये भी आवश्यक है कि जवान समाज के हर वर्ग की सुरक्षा, विश्वास और न्याय के लिए प्रतिबद्ध रहे. हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कृष्ण कुमार राव ने मधुबन में दीक्षांत परेड समारोह में ये उद्गार व्यक्त किए. उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत परेड की सलामी ली. इस दीक्षांत परेड में शामिल 376 सिपाही कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर जनसेवा को समर्पित हुए. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 26 फरवरी से ली जाएंगी. परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा. बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि 12वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 28 मार्च और 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 15 मार्च तक चलेंगी. गीता जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में हरियाणा के खेल विभाग द्वारा 12 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में हरियाणा कुश्ती दंगल का आयोजन करवाया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने के लिए जिला पंचकुला के खिलाड़ियों के कल ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में ट्रायल लिए जाएंगे. ट्रायल के दौरान प्रत्येक भार वर्ग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को चयनित किया जाएगा. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किसान, महिला, गरीब व युवा सहित हर व्यक्ति के हित में काम किया है. यमुनानगर में 52,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम व ओपन एयर थिएटर का निर्माण 18 महीने में पूरा होगा. लोगों को प्रदूषण से बढ़ते खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया और पंचकुला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सहायता, मौलिक अधिकारों व सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया. इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.